ओम तत्सत ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य की महिमा ना तपस तप इत्याग त्यागूर ब्रह्मचर्य तपो तुम ऊर्द्रेता पवेद यस्तु साधेहो नतु मानुषा। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्द्रेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। आहा हा, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस महानता को भूलकर नीचता की धूल में दासा भाव से विचरण कर रहे हैं। कहां हमारे वीरजवान सामर्थ सपन पूर्वज और कहां हम उनकी निर्वीरज और पददलत निर्बल संतान। ओह कितना जय आकाश पताल का अंतर हो गया है, हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा जय जो भीषण पतन हो रहा है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख आरोग्य तेज विद्या बल सामर्थ और स्वतंत्रता और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। मरणं बिंदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात्। जय भगवान शंकर का अमित सिद्धांत है। वीरज को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीरज को धारण करने वाला पुरुष कभी अकाल से मर नहीं सकता। तत्वता बा वस्तुता ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरज नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। बीरज अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी बीरज के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतत बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदाप श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। बीरज भ्रष्ट पुरुष कदाप पवित्र कर्म्यात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है, तब फिर समान मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। अष्ट मैथुन स्मरणम कीर्तनम केले प्रेक्षणम गोज भाषणम संकल्पो अद्व्यासायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। एतन् मैथुन अष्टांगं पर्वदन्ति मनीषिण। विपरीत ब्रह्मचर्य एतत् एवाष्ट लक्षणम्। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के आठ मैथुन बतलाए गए हैं। नंबर एक, किसी जगह पड़ी हुई सुनी हुई या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी स्त्री का ध्यान चिंतन व स्मरण करना। दूसरा, स्त्रियों के रूप गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, शृंगारक गायन व कजली गाना अथवा पदे वार्ता बगना। तीसरा, स्त्रियों के साथ गेंद ताश शतरंज होली इत्यादि खेल खेलना। चौथा, किसी की ओर गीर या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। पांचवा, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा, श्रृंगार रस पूर्ण बाह्यात उपन्यास पढ़कर किंबा स्त्रियों के पदे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दि काम चेष्टा पूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। साधना, किसी अप्रप स्त्री को प्राप्ति के लिए व्यर्थ पाप पूर्ण प्रयत्न करना। और आठवां, प्रत्यक्ष संभोग ये ही अष्टमैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंबा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने से पूर्ण समर्थ है। हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपर्युक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े लिखे पढ़े हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविदा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविदा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किंबा वेश्या की इस नवविदा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती है, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहां पर इन अनिष्टकारी कुटेबों का संक्षेप से वर्णन करते हैं। किसी लड़की किसी लकड़ी को कुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस आत्म कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरी भूत हो जाती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टर बेशन कहते हैं। कोई मोस्ट मैथुन हस्त क्रिया अथवा आत्म मैथुन भी कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती है। फल यह होता है कि इन स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेन्द्रिय टेढ़ा लघु पोला पीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यही पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाई और कंटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। वह नितांत निपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा। नस दौरबल से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सम्मान काम संकल्प से अथवा शंगारक वर्णन गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का बीज नष्ट होने लगता है। उसका बीज पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में बीज धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोबाहा नाम के एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती है और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौरबल प्रमेह स्वप्नमेह मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही वे शुभ्र कीट बलवान होते हैं। और विष को अचार डालने की शक्ति रखते हैं, परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा प्लेग मलेरिया के कीटाणु से दब जाते हैं और फिर मनुख भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये वीर्य नाश के ही दारण फल हैं। हस्त मैथुन से जो वीर्य नाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है। जैसे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपहमार मिर्गी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद है ही, परंतु उससे भी महा महती निंद जय हस्त मैथुन का कार्य है। हस्त मैथुन द्वारा वीर्य के निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महा भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अपागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इनका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तक पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्त मैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति यादश्त सुबुद्धि परतवा सभी चौकट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागलखानों में 100 से 95 आदमी व्यभिचारी और हस्त मैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अति रति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर बर्कमान कहते हैं, सैकड़े पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं किंतु धर्म से स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शरीर परीक्षण करने वाले मूर्खों में नहीं किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह किरणक रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस पितरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परीक्षण की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति और कान व दांत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। बाल चढ़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बार की घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रियां रूपी सेना एक बार की अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, अंतरें और मलमूत्र इंद्रे अथवा काम करने में असमर्थ हो जाती है। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फोका दुर्बल व रोगी बन जाता है, मुख कांति हीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्याय रोगों के कारण वे ग्रस्त सुख भी नहीं भोग सकते। उनको संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जैसे उनकी स्त्रियां बंध्या बनी रहती है, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं, संतति सुख से बेहाथ तो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता, फिर वे व्यभिचार करने लगती है। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दोसाध होती है, वा अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर व देश में दरिद्र, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अंत में सारा कुल नरकगामी होता है। इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस भाग्य को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, जहां तक के प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी बेसंयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर तरी रह जाती है। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुख का मनुखत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को पार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबो हवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है, जुकाम सिरदर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं को बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की कनकोर कटा भारत आकाश की काश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। हा, शोक शोक शोक। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे के लोग पतित बालक बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सके। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण काम पीड़ित बीरजन बीरज को नष्ट करने वाला, बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। दो, बहुत से चलाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में यथस्तता ऐंठते हुए अकड़ कर कुमा करते हैं, बेजरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह है कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। तीसरा, उनका आनंदमय वा हंसमुख चेहरा दुखी वा उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है, प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा क्रोधी वा रूक्ष रूखा बन जाता है, चेहरा फीका पीला वा मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर चाई काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीरजनाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा, आंखों व गाल अंदर धस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती है। छठा, बाल पकने व चढ़ने लगते हैं, मूछें पीली बा सुर्ख व लाल बन जाती है। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीरजनाश का स्पष्ट लक्षण है। सातवां, कोई भी रोग ना रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर दुर्बल ढीला बनता और किसी अच्छे काम में दिल का ना लगना बा न ताकत बनना तथा थोड़े ही परीक्षण से बा दौड़ने से हंफने लगना और मृत पिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना और समान से समान काम कठिन जान पड़ना। आठवां, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत होना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना, बार बार झूठी हो अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीरजनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। दसवां, नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा, उठते समय महा आलस बा निरुत्साह मलूम करना और आंखों का भारी पड़ना। ग्यारहवां, रात्रि में स्वप्न दोष होना, जय पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। बारहवां, बीरज का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय बीरज का बूंद बूंद बाहर निकलना, जय भी हस्त मैथन का एक मुख चिन्ह है। इसका अंतम भयानक परिणाम पुरुषतभ का नाश अर्थात नपुंसकता है। तेरहवां, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी परमा परमेय आदि उग्र रोग होना। चौदहवां, हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना, बस सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। पंद्रहवां, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, यह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। सोलहवां, हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कंपना। साधारण नाटक उपन्यास आदि श्रृंगारक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की आदत रुचि रखना। अठारह, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लजता से गिर व ऊंट की तरह सार उठाकर जान घुमाकर किंबा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। सोलहवां, चेहरे पर पिटका मोहर सा उबड़ना, यह पापी बाकामी का पूर्ण लक्षण है। किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा जाने से नीचे गिर पड़ना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। इक्कीसवां, आबोहवा का परिवर्तन न सहा जाना। बाईसवां, चित्त का अत्यंत चंचल दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्व करना, गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। तेईस, दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। चौबीसवां, क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। चौबीसवां, माथे में कंगर में मेरुदंड और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। छब्बीसवां, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधी का आना तथा शरीर से भी बद बोन करना। वीर्यवान के शरीर से सुगंधी निकलती है अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। सताईवां, मेरुदंड का चुभ जाना, फिर हर समय चुप कर बैठना। अठाईवां, वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। उनतीसवां, आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा रूखा अपर्य बन जाना। तीसवां, छाती का दुर्भंग हो जाना अर्थात छाती पर जहां अंतर गहरा और बिल्कुल विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखाना। पतिमा, नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम पालमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण रूप लग जाता है तथा चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्य नाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। सत्तीमा, किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित या अपमानित बनना, यह वीर्य नाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्राओं को की कुछ भी ना मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना, जय गुलामी के खास चिन्ह है संपूर्ण अपजस दुख गुलामी का कारण एकमात्र बीरज का नाश ही है। तेतीमा अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना, इति प्रमुख चिन्ह। माता पिताओं का कर्तव्य, प्रत्येक माता पिता गुरु बंधु तथा मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य अब यही होना चाहिए कि यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई भी एक दो लक्षण पुत्र पुत्री और शिशु में दिखाई दें तो फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता महिमा स्पष्ट शब्दों में रखें। इससे लज्जा संतोष करना तथा अपमान समझना और मनो अपनी संतान का पूर्ण नाश ही करना है। शरीरन व्यति मंद्रम तभी बनता है जबकि मनुख ब्रह्मचर्य के प्रकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, अतः उन्हें उन विषयों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिए। माता पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में ले जाते हैं, परंतु यह उनकी भारी भूल एवं गुरुता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं कि उनके दुष्परिणाम माता पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं। लड़कों में साफ साफ कहे और उनसे बचे रहने के लिए अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट बतलाएं अथवा जय जीवन प्रथम पथ प्रदीप ग्रंथ अपने प्रिय बालकों शिशुओं अथवा मित्रों के हाथ में रख दे, जैसे उनका कर्तव्य मार्ग उन्हें साफ दिखाई दे। कई लोग ये समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा के हेतु हस्त मैथुन शिशु मैथुन आदि महानंद बराइया का वर्णन करेंगे तो वे यदि नाम भी जानते होंगे तो इन दुर्गुणों को जान लेंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल वृथा व नाशकारी है। यदि आप ना कहेंगे तो बालक संग में पढ़कर दूसरों से अवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख लेंगे, परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध व ब्रह्मचर्य की उज्जवल महिमा आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी व ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा विश्वास रखो। गंदगी व गड्ढे के फेंकने के बनिस्वत उनसे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी व सुरक्षता है। और यही माता पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे दृढ़ से बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल 15 मिनट स्कूलों में जाकर ही पर बढ़िया शिक्षा दे तो क्या ही अच्छा हो। इस पूर्ण विश्वास से यह कह सकते हैं कि भारत का इनसे अति शीघ्र उद्धार हो सकता है। अतः माता पिताओं और सावधान वैद्य व डॉक्टर माता पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे बालक संग में पढ़कर बिगड़ जाते हैं। वीरनाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारण रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। फिर वे वैद्य व डॉक्टरों के मकान व दुकान छिपे छिपे ढूंढने लगते हैं। कोई मदन मंजरी पेलस धातु कुष्टि की गोलियां बीरज वटका नपुंसकारी घृत कोई बड़ी कोई जड़ी बूटी लेह पाक चूरण आदि दूर दूर से मांगते हैं और बेचारे लाभ की जगह और भी तन से मन से धन से बर्बाद हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जितनी धातु पौष्टिक औषधियां होती है वह कामोत्तेजक होती हैं। उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताकत भी दिख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उस औषधि के साथ खाए हुए दूध मलाई आदि का प्रभाव है। संसार में ऐसा कोई वैद्य सम्राट नहीं जो दवा दर्पण द्वारा वीरजहीन को वीरजवान अथवा ब्रह्मचारी बना सकता हो। यदि कोई ऐसा कहे तो उसकी कृष्टता एवं मूर्खता है। एकमात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी तथा वीर धारण करने के लिए समर्थ बना सकता है, दवा दर्पण कदाप नहीं। इससे तो वीर का और भी नाश होता है। आजकल जैसे देखो वही वैद्य बना बैठा है। बूढ़ा भी जवान हो गया, मुर्दों भी जिंदा हो गया, मुर्दा भी जिंदा हो गया और अजब ताकत की दवा ऐसे ऐसे झूठे विज्ञापन का मोह जाल फैलाकर बेसों की तरह बालक बालिकाओं को तन मन तन से बा प्राण से वे वैद्य बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे स्वार्थंद वैद्यों से बचे रहो और सुयोग वैद्यों तथा माता पिता एवं गुरुजनों के सामने अपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी औषधियां अन्य लोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी होती हैं, परंतु एकमात्र विशुद्ध मन संपूर्ण संसार में वीरज रक्षा के लिए दिव्य औषधि है। अन सब उपाय युवा व अनुशंगक हैं। जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अंत में जलवायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी जाती है, परंतु इसके पहले वे रोगियों को खूब लूट लेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु शुद्ध जल शुद्ध व पवित्र भूमि विपुल आकाश व विपुल आकाश बस ये ही इस लोक के पंचामृत हैं। इन्हीं के सेवन करने से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने दीर्घायु आरोग्य सुपन्न ज्ञानी पवित्र मानस व समर्थ सुपन्न होते थे। यदि हम भी इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन रोज नियम पूर्वक किया करेंगे तो हम भी उनके समान निस्संदेह श्रेष्ठ बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य व आरोग्य धर्म अर्थ काम मोक्षणा मोक्षाणा आरोगम मृदमुत्तमम आरोगा तस्या पह परा श्रेयसो जीव तस्या च एकमात्र रोग ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है। और हम चारों को भी नष्ट कर डालते हैं यही नहीं किंतु जीवन को भी अकाल ही में चिंता और चिंता पर चढ़ा देते हैं। सच है कि रोगी पर किसी काम का नहीं होता वह सब के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों से नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। इसके लिए भोग लाभ की संपूर्ण चीज भी दुखदायी बन जाती है। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे चाहे हिमालय जाए कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है जबकि वह या तो मिट्टी में मिल जाए अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध आचरण करने लग जाए। निसर्ग के राज में मूलतः प्रत्येक प्राणी निसीम निरोग परम सुंदर सब प्रकार से पूर्ण तथा अभ्यंग पैदा होते होता है। परंतु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को बढ़िया आरोग्य की ओर सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करे सो तस फल चखा यह मिठ सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगियां निरोग बना सकती हो। गिद्ध चील कोबे वगैरह उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग शोक और दुख उस शरीर में प्रवेश करते हैं जहां पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। आजकल के दरिद्र ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के जहां जैसे फौरन बिना बुलाए हुए दौड़ जाते हैं वैसे ही रोग शोक दुखादि भी नष्ट वीर्य पुरुष के जहां फौरन चले जाते हैं। परंतु आरोग सुख शक्ति समृद्धि आनंद इनका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानी हैं दुराचारी व्यभिचारी पुरुषों से वह कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही जहां बेवास कहते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता प्लेग कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं। वनवास बलवान को कोई सता नहीं सकता। देखो दुर्बल घात का पर यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से बलवान ही बनना होगा, क्योंकि बलवान राजा है चाहे वह भले ही निर्बल हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अपाग्या समझना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नियमित है और भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है। यह कभी भी योगी मानी सुखी यानी सुखी नहीं हो सकता। यह सदा वियोग अर्थात दुखी ही बना रहता है। व्यवचारी पुरुष प्रताप निरोगी और बलवान नहीं हो सकता। एकमात्र वीरजवान ही बलवान आरोग्यवान भगत और भाग्यवान हो सकता है। वीरज नष्ट पुरुष सदा रोगी दुखी पापी और अपागा ही बना रहता है। उसका आधार फिर से वीरज धारण किए बिना सात जन्म में भी होना असंभव है। संसार में तीन बल हैं, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल व्यर्थ है। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धरती बल, निश्चय बल, चरित्र बल, धर्म बल, ब्रह्म बल वगैरह जितने भी बल संसार में मौजूद हैं, सब उन्हीं लोगों उन्हीं तीनों बलों के अंतर्गत हैं। इनमें सबसे पहली सीढ़ी शरीर बल की है और निरोग शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर बल को हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूल आधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात चरित्र बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परंतु उसके साथ रूप से आवश्यकता है और शरीर बल न होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम क्रोध रोग आदि बैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिए हम में शरीर बल का ही होना परमेष्ट है और बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि शरीर बल ही साधनों का मुख्य आधार है और बगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते और न किसी काम में सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। अतः शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मूल है और इसी में हमारी युक्ति किंबा स्वतंत्रता भरी हुई है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी यानी शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी एवं पुष्ट है, और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी एवं दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल बली और समर्थ सुकम बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियम अनुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचर्य बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ऐसे हमारे और शरीर, इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सब का अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होगी जिसकी सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की और आत्मा रूपी राजा की समझिए।